मन से आप काम करते, ऐसे से काम करते हैं, किसी प्रकार से भी एनर्जी भगवान की। अब ये लोग कपड़े सिलाई करके खरीद से बजा करके ठाकुर जी के लिए देते, जरूर उनके लिए चिंता आएगी, जरा चलो तो ठाकुर जी को पहना करके देखेंगे कैसे, ठाकुर जी की चिंता है, दिन रात उसकी चिंता करते। उसी तरह से कुछ चिंतन जितने उच्च अधिकारी वैष्णवों के प्रति, गुरु के प्रति कुछ एनर्जी जाएगी, वो कुछ न कुछ जरूर काम करेगी। और नहीं तो भाई फिर उलट जाएगा। भक्ति किसको कहते हैं, अब वो बतलाइए तो भक्ति किसको कहते हैं, नहीं बतला सके। ओम प्रकाश जी को कहेंगे ये 50 बार सुने किंतु ये भी घबरा जाएंगे, संग नहीं करेंगे ये। ओम प्रकाश जी आज पहले संग थोड़ा सा करता था, आजकल हम लोगों से बहुत दूर रहने लग गया। बहुत दूर रहता है तुम्हारे कहने से, आज तो बतलाओ तुम, तुम बतला दो हमको भक्ति किस
एरिया बढ़ गया,
तुम बतलाओ बतलाओ भक्ति, तब हम समझेंगे हमारे संग में रहता है। तुमको मैं चाहता था कि कहां उच्च सोपान पर ले चलो,
दादी से भक्ति की उत्पत्ति हुई है। और
भक्ति मैंने भक्ति का डिफिनेशन जो बतलाया है क्या है, रूप गोस्वामी ने जो कहा है
भगवान की सेवा को भक्ति कहते हैं,
नहीं
भजन
नहीं, वो तो है।
विवाह किसको कहते हैं बतलाइए तो,
सप्तपति के साथ
एक लड़की का, एक लड़के के साथ वैदिक रीति से, हम लोगों ने तो वैदिक होता है और जैसे भी हो, उनमें दोनों को परस्पर मिला करके सारे जीवन के लिए व्यवस्था करनी होती है, एक साथ में रह करके घर गृहस्थी करो, इसका नाम है विवाह।
सप्तपति भी आवश्यक है, उसके बिना तो वो पत्नी नहीं कराएगी।
तो वैसे ही सब चीज की, सब चीज का डिफिनेशन है, परिभाषा है। भक्ति का परिभाषा ही नहीं जानेंगे तो भक्ति करेंगे क्या, खा भक्ति को जानने चाहिए। भक्ति किसको कहते हैं, जब अपने तन से मन से वचन से तीनों की चेष्टाएं होंगी, ये कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, कैसे प्रसन्न हो, और प्रसन्न हो करके और कुछ नहीं चाहिए, हमारी भक्ति उनके प्रति बढ़ी बढ़े, अपने लिए नहीं, जैसे हमको ये हो जाए वो, तब तो भक्ति नहीं होगी, उनकी सेवा करने पर भी नहीं होगी, तन मन वचन से उनको लिए सब कुछ करेंगे किंतु उसके बदले में हमको कुछ लाभ हो तो फिर भक्ति खत्म हो जाएगी। ये सब तो जानने चाहिए ना, ये साधु संग है, कोई आ गया बैठ गया बस दो चार इधर उधर की बात हो गई, उसको साधु संग नहीं कहते। साधु संग उसको कहते हैं जिसका संग कर रहे हैं वो आपको शासन करेगा, जैसे मास्टर पढ़ाते हैं बच्चों को प्रेम से शासन से, जैसे तैसे उस विषय को एकदम ठीक करा देते हैं, इसका नाम है साधु संग। साधु संग माने एक साथ में खाया पिया खूब मौज किया इधर उधर घूमाए, ये नहीं, हमने तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत से लोग मठ में आए, इस्कॉन को देख लीजिए, 99% सब सन्यासी लोग क्यों चले गए, उच्च अधिकारियों का संग नहीं किया, सोचा जी पुस्तक बेचना ही और पुस्तक दे करके पैसे ले आना ही, मंदिर बनाना ही, ये साधन और ये भजन, ये भजन को जानना चाहिए। भजन कहते हैं किस, और तब कुछ थोड़ा भी करेंगे उसका फल हो। एक आदमी भागवत पाठ कर रहा है, और कीर्तन कर रहा है, 100,000 हरिनाम करता है, 100,000 हरिनाम कर रहा है और भागवत का पाठन भी, और चढ़ावा भागवत का आता है, उसे परिवार का पोषण करता है और हरिनाम करता है, किंतु कुछ वैष्णव की निंदा भी करता है, गुरु की भी, गुरु की बात नहीं मानता, ये भक्ति होगी कि नहीं? ऊपर से देखने के ये चेहरा तो भक्ति का है, तो भक्ति नहीं होगी।
काय मनोवाक्य से ही समग्र होना चाहिए,
तीनों काय मन वाक्य, भगवान भगवान का चिंतन सबसे, और ऐसा होने से होगा क्या, गुरु की निष्ठा उसमें, और बड़ा दीनहीन हो जाएगा। सब वैष्णव का अनुगत सबसे प्रार्थना कर तेनादपि सुनीचेन सहिष्णुता उसमें गुणाएगा, सबको सम्मान जथा उचित देगा, अपने सम्मान की लालसा नहीं, ये सब गुण उसमें वो संभव। एकलव्य जैसा और कोई गुरु भक्त बतलाइए तो कोई है कि नहीं? जितना बड़ा एकलव्य भक्त था ना, अपने गुरु जी के लिए अंगूठा दे दिया ना, अच्छा ऐसा और कोई बतलाइए तो कोई गुरु भक्त ऐसा कोई देखा इतना अच्छा बतलाइए, उसका जोड़ का एक और निकालिए तो हमारे इतिहास में। ओम प्रकाश जी थोड़ा सा सहायता इनकी कीजिए ना, वैसा कोई ढूंढिए तो इतिहास में।
हमारे साधु संघ नहीं होता है, साधु संघ नहीं मिलता है,
साधु संघ मिलता है, प्रचुर मिलता है, तुमको 50 वर्ष हो गया साधु संघ करते,
वो सब जो है
50 वर्ष नहीं हुआ,
40-45 साल।
उसको वायर को निकाल लीजिए नवीन बाबू, वो वायर निकाल लीजिए, ऊपर से आवाज ठीक सुनाई पड़े।
बतलाओ तो ओम प्रकाश जी, दूसरा कोई ऐसा सुंदर अच्छा एकलव्य जैसा गुरु भक्त
ऑफिस में है?
एकलव्य गुरु भक्त नहीं था, एकलव्य क्या था, गुरु द्रोही ना, भक्त नहीं था, स्कूल वाले भी नहीं सोचे, वो अपने शिष्यों को एकलव्य,
तो गुरु जी की प्रतिमा को लेकर के ही उसने मान लिया था, और गुरु
इसलिए भक्त नहीं है,
स्वीकार नहीं किया था,
वो भगवत भक्तों का द्रोही था और भगवान का। वो अर्जुन को हराने के लिए, पांडवों को मारने के लिए और कृष्ण को नीचा दिखलाने के लिए वो द्रोणाचार्य जी से अस्त्र चाहता था। द्रोणाचार्य जी कुछ अंतर्जामी भी थे, लौकिक पारलौकिक दोनों विषयों के गुरु। उन्होंने कहा भाई तुम्हें तो अस्त्र शिक्षा नहीं देंगे, तुम जाओ, नहीं दिया। किंतु उसने वन में लौट करके उनकी प्रतिमा बना करके और उससे सीखा, और ऐसा धुरंधर हुआ कि पांचों पांडवों को लेकर के द्रोणाचार्य जी जंगल में जा रहे हैं, और एक साथ में कुत्ता भी लग गया,
कुत्ता
कुछ परीक्षा लेना चाहते थे इन लोगों का, जैसे कहां तक धनुर्विद्या में पारंगत। थोड़ी देर में जब जंगल में पहुंचे तो देखा जी वो कुत्ता भौंकने लगा कुछ 8 बार, तो किसी ने ऐसे बाण चलाया उसका पूरा मुख भर गया किंतु खरोंच तक नहीं आई तनिक भी, और पूरा मुख बंद हो गया। लोग देखो जी एक सेकंड के अंदर में ये कैसे हो गया, ये तो किसी बड़े धनुर्धर का कार्य है, ऐसे साधारण नहीं। तो बाण से मुख भर गया है, मौका एक बार और साथ ही साथ में बाणों से भर गया और कहीं भी उसको आघात नहीं लगा। तो जिधर से आवाज आ रही थी कुछ उधर ही में चढ़ बढ़ते बढ़ते देखा जैसे मोटा एक नवयुवक काला सा धनुष बाण लिए हुए और आया और उसके सामने द्रोणाचार्य की मूर्ति मिट्टी की बनी हुई। आई ये कुत्ते के मुख में किसने बाण मारा, तो मैंने मारा। तुम तो धनुष बाण में बड़ी पावन, तुम्हारे गुरु जी का नाम क्या है? मेरे गुरु जी का नाम द्रोणाचार्य है और उनके साष्टांग प्रणाम किया। मैं तुम्हारा गुरु हूँ। ठीक, तो तुम इतना पारंगत हो गया और हमें दक्षिणा तो दी नहीं, तो आप जो दक्षिणा चाहे वो ले। ठीक है, तो बोल दक्षिणा हम बुलाओ, क्या चाहिए? तुम दाहिना अंगूठा काट करके दे दो, साथ ही साथ में तलवार देकर के आवाज।
उसी से बरस हो गई।
अच्छा, किस लिए लिया
उसको?
अर्जुन और का बराबरी ना कर सके और कोई गड़बड़ी ना करे, इसलिए कुछ दिनों के बाद में वो ऐसा और निकला कि कौरवों के पक्ष से अर्जुन को और पांडवों को मारने के लिए और कृष्ण को मारने के लिए चेष्टा की। अंत में कृष्ण से उसका युद्ध हुआ और कृष्ण ने चक्र सुदर्शन से उसका ऐसा असुर था ये गुरु भक्त। गुरु शिष्य वह है जो गुरु की इच्छा के विपरीत कुछ न जो कहे और उसे सभी कुछ हो जाएगा। एक गुरु थे उनका नाम आयुध्यम या क्या था, उन्होंने शिष्य को कहा कि हमारी गायों को चरा लेना, ब्रह्म ज्ञान के लिए उनके पास आए। कहा चराने, अरे तुम मोटा ताजा दिखता है, ये गैया चराता है, खाता क्या है? हमारे यहाँ तो कुछ खाता नहीं है, जान पूछ करके नहीं देते। तो उसने गैयों का दूध पी लेता, अरे हमारे आदेश बिना गैया का दूध पी लेता है, ये तो बात ठीक नहीं। हमारी गैयों को चरा करके लाएगा, हम यदि कुछ देंगे तो, और तुम ऐसे ही खा लेता है। अच्छा गुरु, फिर 10-5 दिन बीत गए, उनको बुलाया शिष्य को, अरे भाई देखते हैं तो बहुत ही मोटा ताजा ही है, तो क्या खाता है? दूध पीता है तो नहीं तो, तो क्या करता है? तो जब गायें घास चर करके रात में बैठ करके पागुर करती हैं तो यहाँ पर कुछ लग जाता है, वो फेन होता है, फेन हो जाता है, फेन लग जाता है, उसको मैं चाट लेता हूँ। ओ ये तो अच्छी बात नहीं, ये बहुत गंदी बात, फेन समझते हैं ना, अच्छी बात मत करना। चला गया। 10-5 दिन के बाद में फिर उनको पुकारा तो वो आया नहीं। भाई वो कहाँ गया? खोजते खोजते उसका नाम पुकारते हुए, अयोध्यम अयोध्यम कहाँ तू है? गुरु जी मैं कुएं में गिर गया हूँ। कैसे गिर गया?
उपमन्नु,
उपमन्नु,
हाँ गुरु जी का नाम धौम।
कैसे गिर गया? तो गुरु जी मैं भूख लगी थी तो गाय का तो ये दूध और ये भी मना था, तो मैंने एकवन का पत्ता में दूध होता है उसको मैंने खा लिया और खाते ही हमारी आंखें अंधी हो गई।
अच्छा क्या बता?
एकवन इकवन का पत्ता,
अकौआ
का, उसको मैंने पी लिया खा लिया और वो आंख हमारी, इसलिए मैं पूरी नहीं देख पाया। उसको निकलवाया, निकलवा करके उसके सिर पर हाथ रख दिया, जिस काम के लिए तू हमारे पास में आया था ब्रह्म ज्ञान के, हमारे कृपा से जब हमारा आदेश तुमने माना, जो जो कहा जाओ। सारी विद्याएं ब्रह्म ज्ञान तुमको अभी तुरंत
मिल गई
और साथ ही साथ गुरु जी का संस्कृत में श्लोक स्तव करते हुए और ब्रह्म ज्ञान उसको देते मैं सब जगह ब्रह्म मैं भी ब्रह्म का एक अंश हूं और ये सारे संसार में उसके बिना कोई एक कोई सत्ता ही नहीं हो सकती। ये गुरु जी की कृपा है बिना किसी पढ़े लिखे हुए बस गुरु का गुरु भी ऐसा हो शिष्य भी वैसा नहीं तो जिसके लिए परिश्रम करेंगे वही चीज धन के लिए परिश्रम करेंगे धन मिलेगा धन नहीं भी मिलेगा किंतु इसके लिए करने पर जरूर मिलेगा अवश्य मिलेगा। तब हम कुछ प्रयास कर सकते हैं भक्ति के लिए भाव भगवान की कृपा से होगा वहां पर अपना साधन भजन कुछ नहीं काम करेगा कामना वासना हम छोड़ सकते हैं ये हमारे अधिकार में है कामना वासना छोड़ दिए किंतु वो चीज कहां से आएगी आप परिश्रम करेंगे मिल का मालिक बिजनेस का जो मालिक है वो पैसा देगा तब तो मिलेगा पैसा देना उसका काम है और परिश्रम करना आपका काम है तो आप भक्ति के लिए परिश्रम कर सकते हैं किंतु देना भगवान के हाथ में है इसको सब इसलिए हरि कथा ये हरि नाम इत्यादि करना ही नहीं है ये तो हमारे बात में है किंतु हमारे जीवा पर भगवान का नाम नित्य करे और फिर उसमें नींद न आए आलस्य न आए और अपने आप सो रहे हैं जग रहे हैं नाम अपने आप हो रहा है उसमें कोई भी प्रयास ये भगवान का नाम ये भगवान के हाथ में हमारे हाथ किंतु निष्कपट होने से सत्य वर्ष की था
सरकार
तो ना
गुरु जी का कल 14 तारीख को 100 वर्ष उनके जन्म से पूरा हुआ था
सरस्वती महाराज का
नहीं हमारे गुरु जी का
अच्छा केशव महाराज जी का
हाँ
अच्छा
तो उसके लिए हम लोगों ने एक आयोजन किया उसमें हमारे भारत वर्ष से इधर से उधर से हजारों भक्त लोग आए थे
मथुरा में
नवदीप में
नवदीप में
तो मैं भी विदेश से वहीं पर डायरेक्ट आ गया
तो नवदीप परिक्रमा कर गए हैं क्या
परिक्रमा करके नहीं परिक्रमा पीछे होगी अभी गुरु जी का 3-4 दिन का उत्सव था
अच्छा
दिन रात हरि कथा हुई बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हुई
तो वो तो महाराज पहुंचे हुए महात्मा उनकी क्या बात है
गुरु तत्व के संबंध में गुरु की
हरि चरणों में स्थित है उनको क्या है तो उनका भगवत भाव होता है
बस उनका नाम स्मरण किया जिससे हमारा भी कल्याण हो उनके जैसे हम लोग भी
गुरु देवानंद जो मठ है तो ये उस शिष्य ने बनाया उसके नाम से रखा गया देवानंद उसने रुपये देकर बनाया था बड़ा बढ़िया किया उसने अपना घर बिक्री कर दिया
हाँ, हाँ,
हाँ। और ये देवानंद था हम अंदाज तो लगा लिए उसी के नाम से है
हाँ,
हाँ। बड़ा बढ़िया धन्यवाद आप लोग मानव जीवन सफल कर लिया आप लोगों ने भगवान के चरणों में सिर रख दिया बाप दे बाप सर्व अर्पण कर दिया सर्वस्व अर्पण कर दिया आपने आपको रखा ही नहीं क्या हमारे जैसे साधारण आदमी को पार करने के लिए आ जाते दया करके कृपा है आपकी
बहुत अच्छा रहा दिन रात बस भगवत तत्व में सब लोग लगे रहे,
जो इस मार्ग में पड़ जाएगा ना वो छोड़ ही नहीं सकता, रात और दिन उसका एक
पकड़ेगा। कल शाम को पकड़ेगा, परसों पहुंचेगा।
वासुदेव सब मिट्टी सह महत्व से दुर्लभ है,
सब्जी वगैरह बाजार वगैरह जो भी है,
वासुदेव सर्व मिट्टी ये खोपड़े में बैठ
जाएगा, ठीक है ना। और बोले बड़ा उद्देश्य रह गया, हाँ
महाराज आपको दर्शन हो गया, बड़ा बड़ा अच्छा काम है, बड़े भाग्य से मिलता आप लोगों।
मैं बहुत दिनों से सोच रहा था जी,
अच्छा
कब ऐसा होगा जो किसी वैष्णव का दर्शन मुझे मिल जाए, किसी वैष्णव का दर्शन मुझे मिल जाता तो बड़ा अच्छा था।
अरे कौन वैष्णव है, पहले हमने बता दिया बंसक भगत काही राम के,
बता देना
बंसक भगत काही राम के, उनमें
जो प्रतिदिन सब समय भगवान के नाम में मत रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं, जिनको अपना होश नहीं है, जिनकी सारी संपत्ति लग जाती है ठाकुर जी की सेवा में,
बराबर
वो वैष्णव है।
बराबर
तो वैसा वैष्णव जगत में कम है, केवल एक दो ही हैं। उसमें एक को मैं जानता हूं और किसी को नहीं जानता,
वो कौन है? वो कौन है
जो हमसे बातचीत कर रहा है?
वही पहले बताया, वही बंसक भगत वही है, ठीक है पक्का बात जान गया। बंसक भगत काही राम के, कंसर कामने को काम के
महाराज जी कह रहे हैं जो हमसे बात कर रहे हैं
वहाँ की धर्मशाला जो है ना नवदीप वाली,
मद भक्तेश अभिदास्यते,
तो वो तो
इस मोह कलिलम मोह है जो छूटेगा नहीं, सुनार गया सुनार गया।
भक्ति में मोह रहे और न रहे कोई बात नहीं है, मोह थोड़ा सा रहे कृष्ण में मोह ही लगा दो तो भी कल्याण हो जाएगा। मोह आपका है ना, मोह यदि है तो कृष्ण में लगा दो,
तो
काम है तुम्हारे अंदर में तो काम कृष्ण में लगा दो, यदि भय है तो कृष्ण में लगा दो, किसी प्रकार से कृष्ण में चित्त लगा दो,
ध्यान लगाओ
बस हो जाएगा। यदि काम तुमको हो रहा है संसार में तो कृष्ण से बढ़कर के सुंदर कोई नहीं है, बस उनमें काम लगा दो,
ठीक है उसको ट्रांसफर कर दो उधर,
बस
उधर ट्रांसफर कर दो, संसार से मत करो प्रेम, प्रेम करो उससे।
काम और प्रेम में अंतर है, काम संसार में बांध देता है, मोह है, किंतु कृष्ण में ये काम भी लगाओ
तो छुटा देगा,
तो छुटा करके गोपियों जैसा प्रेम दे देगा। ये भागवत का संदेश है, गीता में सब समय कहे काम छोड़ो क्रोध छोड़ो, कृष्ण कहते हैं गीता में ये काम छोड़ो, काम छूटेगा नहीं, बड़ा कठिन है। बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मा तक और शंकर तक नारद तक गिर गए, इसलिए इतना कलयुग में ये छोड़ना मुश्किल है, तो क्या करो काम कृष्ण में लगा दो बस।
बात तो ठीक ही है,
छोड़ो मत कोई चीज।
स्वकर्म न तम बिरचा सिद्धि बिंदी मानव, स्वकर्म न तम बिरचा सिद्धि बिंदी मानव है, अपने कर्म से उसका उसके लगा दो,
जो कुछ तुमको है
ईद करो उसी
पुष्पम कुछ भी आए दे दो,
ईद करो उसी ज्वार सी दयाज ये तत्कुरुषो मदर्पण मेरे को अर्पण करते जाओ।
इसमें भी बंधन है, इसमें भी बंधन हो जाएगा। तुम्हारा है क्या जे तुम कृष्ण को अर्पण करेगा, क्या है तुम्हारा? रहे तब तो अर्पण करेगा, नहीं सुन रहे, यही तो मुश्किल है आपसे बात करना।
माइक
ये मुश्किल ये
आपका ये संसार में क्या चीज है जो भगवान को देंगे?
क्या दोगे?
क्या है? पत्र भी तुम्हारा है, उन्हीं का तो है, तो क्या समर्पण करेगा तू? इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं है, समर्पण करने के लायक तू है ही नहीं। वो भी तुम्हारा अभिमान है, मिथ्या अभिमान। इसलिए तुम उनको हो जाओ, बस इतना ही।
बिगिनर्स को समझाने के लिए है, जिसने शुरुआत किया उसको एक रास्ता डालते हैं,
उससे भी सहज है। तुम कृष्ण के बन जाओ, बस कृष्ण को, मैं तुम्हारा हूँ बस।
गाय करते पूरा बलो चोखो बुरो जो कुछ थारू थे मनुष्य धारू। मारवाड़ी भाषा का बता है, सुख अच्छा बुरा जैसा हूँ तुम्हारा हूँ तुम मरे को सुधारो,
बस बस ऐसा है। वो अभ्यास इतना करे जो क्रोध को छोड़ो बोलते हैं। क्रोध को कौन छोड़ेगा? क्रोध को छाड़ना सहज है। कृष्ण ने तो कह दिया क्रोध को छोड़ दो, 10-20 लाख जन्म लग जाएगा क्रोध छोड़ने में, तो जीवन बर्बाद हो गया। ये ज्ञानी लोगों के लिए कहा गया, भक्तों के लिए नहीं कहा गया। उनके लिए तो ये कहा गया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, जैसे हो छोड़ करके बस हमारा शरणागत। घर में गृही है, गृहस्थ है, तो भी वहीं से कहो जैसे मैं तुम्हारा हूँ, हमारा सर्वस्व तुम्हारा है, बस ये कहने से ही बस।
सरल मार्ग है, सरल मार्ग है,
सहज मार्ग,
पिटफॉल्स नहीं है
इसमें। क्रोध को छोड़ने की बात नहीं है, काम छोड़ने की बात नहीं है, जैसा है तो वैसा ही रहे।
आंख नीचे चले जाओ,
चले जाओ बस।
हमारी उस
सा जगी, और तब महाप्रभु जी ने गदाधर पंडित की तरफ इशारा किया। अब वो गदाधर प्रभु के पास में जाने आने लगे, ये हमको मधुर रस की उपासना का मंत्र दे दो। कहिए यदि महाप्रभु सुनेंगे तो हमको त्याग कर देंगे। तो अभी महाप्रभु जी ने उनको इशारा कर दिया, दे दिया। तब उनको क्लिंग कृष्णाय गोविंदाय की उपासना गोपी जन वल्लभाय की थी। तब से वो उनके पुत्र विठल जी मधुर रस के उपासक, किंतु ये किसी को बतलाया नहीं गया इनके संप्रदाय में। तब से विठल जी ने उस रस से उपासना आ गई, किंतु ऊपर से वात्सल्य का ही देते थे।
आपके साथ तो कौन सा दिन थे भी हमको पूछिए।
पर जो है ये चमड़ा है, इसके अंदर में मन बुद्धि अहंकार है, और उसके अंदर में आत्मा है, और आत्मा के अंदर में परमात्मा है। इतने तत्व हैं इसमें। हम लोग आत्मा हैं, शरीर नहीं है। जो लोग इस शरीर को मैं समझते हैं, मेरा समझते हैं, और इसके लिए ही व्यस्त रहते हैं, ऊपर से तो हरिनाम करते हैं, किंतु ये भाव रहता है कि मैं शरीर हूँ, और शरीर के बाहरी पर भी विचार करके चलते हैं, उनको चमार कहा गया। वो गए अष्टावक्र जी उनके दरबार में, जनक के दरबार में, उनको देख करके सभी हंसने लगे। काला पद उठा और अंगों का टेढ़ा आया है,
टेढ़े थे तो उपहास किया, उनका
उपहास किया, हंसने लगे, तो ये भी हंसने लगे। जब हंसने लगे तो महाराज जनक ने कहा जे महाराज आप क्यों हंस रहे हैं? कहे ये लोग किस लिए हंस रहे हैं? तो ये तो आपका ये शरीर देख करके ये टेढ़ा मेढ़ा और यहाँ पर आ गए कैसे बड़े सभा में?
तो उन्होंने
कहा कि जो शरीर को देख करके हंसता है वो चमार है, यहाँ पर सब चमार बैठे। मतलब
वो कौन से थे यहाँ पर?
उन्होंने इसलिए हंसा। राजा जनक ने पूछा जे क्यों आपने हंसा? तो उन्होंने कहा जे मैं हंसा नहीं, रोया, इसलिए कि मैं हजारों मील पैदल चल करके बड़े कष्ट से यहाँ आया। सुना था जी वहां पर आत्मज्ञानी लोग, ब्रह्मदर्शी लोग हैं आपके दरबार में, किंतु यहाँ पर ब्रह्मदर्शी किसी को हमने नहीं देखा, सबको चमार देख रहा। आप यज्ञ बल को, हमको और सबको चमार ही देखते हैं, तो जरूर चमार देखते हैं। क्यों? तो जो चमार होगा वही देखेगा जो टेढ़ा काला और कटा फटा हुआ ये चमड़ा है,
कुरूप स्वरूप।
तो इसलिए हमारे आत्मा का आप लोगों ने नहीं देखा जो आत्मा हमारा कितना उन्नत है। संसार के जितने भी मल हैं उससे ये निर्मल हो गया, ये आप लोगों ने नहीं देखा। ये शरीर देखा कि टेढ़ा मेढ़ा काला, इसलिए इसलिए ये सभी लोग समार। उन्होंने गोदी में उनको उठा करके सिंहासन पर बैठा के या उनका पूजा अर्चन किया। आप आत्मज्ञानी, इसका ये तात्पर्य पहली स्थिति में थोड़ा सा ये ज्ञान के लिए जरूरी है। आत्मशुद्धि, भक्ति में आत्मशुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है। जो जहाँ है स्थाने स्थिता तुनवान, जो जहाँ है, गृहस्थ में है, त्यागी में है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, कोई भी है, यहाँ तक कि पापी भी है, कोई भी हो, भगवान का नाम ले सकते। इसी से क्रमशः साधु संघ हो करके और अपने आप तत्व ज्ञान भी होगा, भगवान भी भक्ति।
तो गुरु जी वहां पर इसलिए कहा था,
इसीलिए आत्मज्ञान के लिए। ये संसार, ये जो है ऊपर से ये जो चमड़ा सा दिख रहा है, इसी में संसार लगा हुआ है
ना। उनका उद्देश्य भी था, कहने का यहाँ तो सब चमार बैठे हुए हैं,
नहीं है? तुम भी स्थूलदर्शी, तुमको समझा रहे हैं ना, जो उपमा दिया गया
नहीं, वहाँ से सुनकर के इन शब्दों को ये भी कहा था आपने, दो तीन व्यक्ति
कि एक समय में प्रभुपाद के कुछ सन्यासी नेमी महाराज थे, बड़े विद्वान आदमी, और उनके साथ में सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी इत्यादि 10-15 ब्रह्मचारी लोग ईस्ट बंगाल में प्रचार करने के लिए गए थे। तो उस समय में कुछ विवेकानंद जी का ये जो जितने भी जीव हैं वो सभी शिव हैं, शिव माने ब्रह्म हैं, और जितना भी पथ है, जितने भी मत हैं, वो भगवान को पाने के लिए एक एक मत हैं, सभी बराबर है। ये इनका उस समय भारतवर्ष में और विशेष करके बंगाल भर में बड़ा जोर से प्रचार चल रहा था ना? जीव ही ब्रह्म है प्रत्येक, और भगवान नाम का कोई चीज नहीं, ये जो जीव है, ये शरीर है, यही ब्रह्म है, भगवान है। इसलिए जितने रोगी हैं, जितने निडी हैं, इन लोगों की सेवा करने से ही भगवान की सेवा हो जाएगी। ये उन समय में खूब उनका प्रचार था। वो वहां जाकर के उन लोगों में से सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी थे, एक दिन भाषण में दिया उठ करके, जो जीव कभी भी शिव नहीं हो सकता, जीव ही रहेगा, शुद्ध होकर के अधिकतर अधिक से अधिक शुद्ध होकर के भगवान की सेवा कर सकता है बस, किंतु रहेगा जीव ही। जैसे आज तक कोई भी ब्रह्म होकर के कृष्ण नहीं बन गया, हनुमान जी तक, शंकर जी तक भी भगवान नहीं बने, राम नहीं बने, उनकी सेवा की। नारद जी इतना तपस्या किया, आज तक वो भगवान नहीं हुए। कोई भी शंकर जी आज तक भगवान नहीं बन गए, गणेश जी नहीं हुए। इसलिए जीव शिव नहीं हो सकता है, ब्रह्म नहीं हो सकता है। दूसरी बात, एक चोर का भी अपना मार्ग है, तो चोर कभी भगवान को पा जाएगा? एक आदमी देवता का भजन कर रहा है रुपए पैसे के लिए, धन संपत्ति के लिए, तो वो क्या कृष्ण को पा जाएगा? नहीं पा सकता। एक आदमी अस्पताल में काम कर रहा है, जैसे डॉक्टर है, रोगियों की सेवा कर रहा है, ये भगवान को पा जाएंगे? नहीं पाएंगे। यहां तक कि देवताओं का भजन करने वाला देवलोक में जाएंगे, और वहां से उस फल को प्राप्त होकर के फिर नीचे गिर जाएंगे जब तक का भोग होगा। 5 वर्ष के लिए प्रेसिडेंट है, इसके बाद में
अभी नीचे जाएंगे,
उसके पहले भी गिर सकते हैं, उनको कोई नहीं पूछेगा ना? इसलिए देवता भी एक पद है, ब्रह्मा का भी एक पद है, वहां से नीचे गिर जाएंगे। इसलिए कोई भी भगवान को पाने के लिए एक ही मार्ग है भक्ति का, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भक्ति में भी हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम सहज सुंदर रूप में ये भगवान का नाम। इसे कलयुग के अतिरिक्त में और कोई उपाय नहीं। इसलिए उन्होंने कहा ये जो विवेकानंद हैं, ये विवेकानंद नहीं है, विवेकानंद है, बिना विवेक के हैं। क्यों? ये उल्टी पुल्टी शास्त्रों से विरुद्ध बातें कहते हैं। गीता का ये विचार नहीं है, भागवत का विचार नहीं है, वेदों का ये विचार नहीं, महापुरुषों का ये विचार नहीं, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है कि जीव ही ब्रह्म है और जितने मत हैं सभी एक हैं। आकाश में जाने पर सब कुछ बराबर दिखता है ना, कहिए गलत बात, बेवकूफ ऐसा कहते हैं। ऊपर जाने से दृष्टि शक्ति के अभाव के कारण इसमें दृष्टि शक्ति का कमी है, इसलिए घास और पहाड़ भी और पेड़ भी बराबर दिखते हैं। वैसे ही मूर्ख लोग जो हैं, मूर्खता की हद जिसमें हो जाती है, वो लोग देखते हैं कि ये वैष्णव है, ये साधु है, ये चोर है, ये डकैत है, सब बराबर है। डकैत कभी भगवान को डकैती से पाएगा? ये राजनीति के पद से चल रहे हैं, आज देखे जी कितने आदमी मारे जा रहे हैं, इसे भगवान को पा जाएंगे? ये भी तो एक पथ है। कोई ये कहता है जी बुद्ध देव कहते हैं, भगवान और वेद नहीं है, तो इस पथ से भगवान को पा जाएंगे? ये भी एक पथ है। इसलिए एकमात्र भगवत भक्ति, इसीलिए उन्होंने कहा जी बेकूफानंद, बेकूफानंद नहीं कहा उन्होंने, कहा विवेकानंद, विवेकानंद नहीं, बे माने नहीं,
विवेक के अभाव जिसमें है,
जिसमें है ये कहा। और वो सब लोग अपने आप बना चढ़ा करके कहा, उसी का था बस, वो सारी सभा एकदम बिगड़ गई।
शत्रु भाव से भी तो लोगों को पा सकते हैं, शत्रु भाव से भी लोगों को भगवान को
क्या
पाया? शत्रु भाव से तो पाया भगवान को
नहीं पाया,
जय विजय
क्या पाया, पाया क्या
भगवान को तो दर्शन प्राप्त
किया, वही तो मुश्किल है। समझो दो चीज होता है, एक होता है अस्पताल में गया ना, रुपया खर्च किया, क्या हुआ तुम्हारा, तुमको मिला क्या, क्या मिला,
स्वस्थ रहा,
यही तो बेवकूफी है। हमको जो रोग था वो रोग दूर हुआ, इस चीज को समझो। रोग हमको एक आकस्मिक भाव से नए रूप में रोग हो गया और उसे बड़ा कष्ट पा रहे थे, उस रोग से उस रोग को दूर किया, मिला तुमको क्या? ये निगेटिव एस्पेक्ट है, इसलिए
वही तो रोग दूर होने से स्वस्थ लाभ हुआ,
कोई जरूरी नहीं है, कोई यही तो बतला रहे हैं महाप्रभु जी। इसलिए गीता को कहा जैसे ये बाहरी है, उसे कुछ लाभ नहीं होने का, तुम्हारे अंदर में जो कमी थी वो तो दूर हो गई, क्रोध दूर हो गया, किंतु क्रोध दूर होने से ही भगवान को मिल जाएगा, बिना भजन के नहीं मिलेगा। ये अफर्मेटिव चीज है, अफर्मेटिव माने सकारात्मक चीज है। और वो जो है नहीं नहीं नहीं, क्रोध मत करो, काम मत करो, द्वेष मत करो, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ये छोड़ दो, ये कुछ हद तक अपने को निर्मल बनाना है, बस शारीरिक आसक्ति छोड़ना है, अभी मिला नहीं तुमको। और यदि एक आदमी ये सब के लिए चेष्टा नहीं करता है, अजामिल जैसा व्यक्ति भी नारायण का नाम कर दिया बस, उससे ये सब तो दूर हो गया और भगवान की प्राप्ति हो गई। इसलिए ये अफर्मेटिव चीज है। वैष्णव का कहना यह है, भागवत का कहना यह है, तुम काम क्रोध को दूर करने के लिए चेष्टा मत करो, ये लाख जन्म लग जाएंगे और फिर भी तुम छोड़ देगा, फिर आ जाएंगे, इसलिए अधिक पद चेष्टा करो। तुम नाम करो जिस अवस्था में है जैसे है, हरि भगवान की कथा सुनो, बस शिष्य भगवान मिलेंगे, वो क्रोध भी दूर हो जाएगा, काम भी दूर हो जाएगा और भगवान को मिल भी जाएगा, भक्ति इससे मिलेगी, ये अफर्मेटिव चीज है। इसलिए वैष्णव लोग काम क्रोध को दूर करने के लिए अधिक प्रयास नहीं करते हैं, जितना ही हरि नाम करेंगे, जितना ही भगवान की कथा सुनेंगे, ये सब अपने आप स्थायी रूप से दूर हो जाए। इसलिए भागवत में ये सब चीज नहीं कहा। भागवत में बतलाया जी हरि नाम करो, भगवान की कथा सुनो, उनका अर्चन करो, पूजन करो, उनके भक्तों का संग करो, यह है। इससे वो भी दूर हो जाएंगे और नहीं तो लाखों जन्म में तुम्हें क्रोध को नहीं जीत सकता है, मन को नहीं जीत सकता। इसलिए महाप्रभु जी ने सारी गीता का उपदेश सुन करके कहा यो बाह्य गीता जैसे ग्रंथ को केवल रामानंद इस विषय को समझे, दूसरों को समझने में बड़ा भारी कठिन है। इसलिए उनके जो अनुगत हैं वो लोग इस चीज को समझे। एक आदमी क्रोध को छोड़ने के लिए चेष्टा करते उतने में तो लाख बार हरिनाम करके और भगवान का पूजन स्मरण गीता का भागवत का पाठ इत्यादि कर सकता है, सुन सकता है, उसमें काम भी दूर हो जाएगा, क्रोध भी दूर हो जाएगा। उदाहरण के लिए इसीलिए दिखलाया गोपियों में काम था, उन्होंने कृष्ण को दे दिया। कृष्ण ही हमारे सर्वस्व, हमारे पति हैं, रहें कृष्ण के प्रति। उसमें क्रोध की भी जीतने की जरूरत नहीं है, लोभ को भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस हरिनाम करते समय तो क्रोध तो रहेगा धीरे 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 धीरे, फिर ऐसा हो जाएगा सांप का विष दंत बाहर कर देने से सांप ऐसे काटेगा भी तो उसका कुछ फल नहीं होगा। वैसे महापुरुष जो क्रोध करते हैं, नारद जी ने क्रोध किया किस पर, किंतु हुआ क्या, उनको उनके क्रोध से भगवान मिल गए, उनका क्रोध भी मंगल का कारण होगा। वैष्णव का क्रोध, गुरु का क्रोध, यदि सचमुच में वैष्णव और गुरु उनका क्रोध भी भगवान को मिला देगा, उनका शासन भी भगवान को मिला देगा,
मंगल गई।
इससे बढ़कर के और मंगल क्या हो सकता। हरिदास ठाकुर को एक जमींदार के बहकाव में आकर हमको बहुत रुपया मिल जाएगा यदि हरिदास ठाकुर को नीचा दिखला दे, और वो तीन रात वेश बना करके नाना प्रकार से चेष्टा की। उन्होंने कहा ये जरा बैठ करके अभी सुनिए हरिनाम, मेरी साधना ये पूर्ण हो जाएगी, हरिनाम थोड़े देर में ही होने ही वाला है, बस आप जो कहेंगी मैं मान लूंगा, आप थोड़ी देर ठहर। इस तरह से उनको दो रात सुनाया, तीसरी रात उसका चित्त निर्मल हो गया। देखिए तो लाख वर्ष तपस्या करने से होता जो हरिनाम करने से हुआ, सुनने से हुआ, करने से कभी छोड़ो, चित्त निर्मल हो गया। ऐसी साधु महंत बन गई, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा लोग उसके चरणों के लिए उसके चरणों में जाकर के गए। इसलिए इससे बढ़कर के कोई साधन नहीं, देखने में ऐसा लगता है। तुम लोग समझो,
कल मैं पढ़ रहा था चैतन्य चरितमृत, इसमें मध्य गीता में आया चैतन्य महाप्रभु ने पूछा तत्ववादी से व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ।
चैतन्य चरितमृत में कौन तत्ववादी, कहां की बात है,
साउथ इंडिया
तत्ववादी जानते हैं किसको कहते हैं, मध्वाचार्य के संप्रदाय को तत्ववादी कहते हैं। उडुपी की बात है ये, उडुपी में महाप्रभु जब गए तो उनसे बात हुई, क्या बात हुई,
तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, तो उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से हम लोग बैक टू गॉडहेड जा सकते हैं, यही गोल ऑफ लाइफ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, दिस इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, द रियल गोल ऑफ लाइफ इज द लव ऑफ गॉडहेड।
आपने वो इंग्लिश माध्यम से पढ़ा,
हाँ जी, तो वो भी थ्रू श्रवणम कीर्तनम जैसा आपने भी कहा, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. सो इसके बारे में सुनना चाहते हैं.
देखिए इस जगत में साधारण लोगों का उद्देश्य होता है कि मैं सुखी रहूं. उसके लिए धन कमाना सुख के लिए जरूरी है. कुछ लोगों का ये विचार है ना. एक चपरासी है, चपरासी समझता है ना ऑफिस, वो भी धन कमाता है. एक वकील, एक व्यवसायी भी रुपया कमाता है. प्रधानमंत्री भी पैसा कमाते हैं, ऐसे नहीं करते. एक प्रेसिडेंट भी पैसा कमाता है. तो पैसा कमाने में कोई स्तर है या नहीं है ना? एक चपरासी को वह सम्मान मिलेगा और रुपया मिलेगा जो कि राष्ट्रपति को मिलता है. दोनों का स्तर तो एक नहीं है. तो उसी तरह से विष्णु आराध्यते इस श्लोक में है, वर्णाश्रम आचार्यता पुरुषेन परः पुमान विष्णु आराध्यते पंथा न तत्तोष कारण. उन लोगों ने कहा विष्णु की आराधना ही सबसे बड़ी चीज है. महाप्रभु जी ने कहा यह बात गलत है, ठीक नहीं. क्यों ठीक नहीं है? कि वर्णाश्रम में जो भगवान का भजन किया जाता है, विशेष करके गृहस्थी में रह करके जो वर्णाश्रम धर्म वाले हैं, जो करते हैं, वो हाईएस्ट टॉपिक, हाईएस्ट उद्देश्य नहीं है. थोड़ा सा है. क्या होगा? पालन करना, उनकी सेवा करना. स्त्री के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है, और स्त्री का वर्णाश्रम धर्म में पति के प्रति जो कर्तव्य है, पुत्र का जो पिता के प्रति कर्तव्य है, और पिता का भी पुत्र के प्रति कर्तव्य है. एक आदमी समाज में रहता है, समाज में भी मनुष्य का कोई कर्तव्य है. दान देना, गरीब लोगों की सेवा करना. इस तरह से विष्णु की आराधना करते हुए इन सब कामों को करे तो सहज ही भगवान को ही प्राप्त होगा. महाप्रभु जी ने कहा यह बाह्य कारण है, इसे मैं संतोष नहीं. जीवन का अंतिम गोल यही है. बात है, इससे समाज तक तो ठीक रहेगा, किंतु भगवत की प्राप्ति उससे होगी कि नहीं? यदि प्रहलाद महाराज अपने पिता की सेवा करते हैं हिरण्यकश्यपु की, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो कि नहीं होगी? कि नहीं?
कृष्ण की.
मैंने क्या कहा?
प्रहलाद महाराज अपने पिता
प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु की सेवा करेंगे, उसकी बात मानेंगे तो उनको भगवान मिल जाएंगे? तो
नॉट नेसेसरी, पक्का जरूरी नहीं है. अगर वो भगवान के बारे में बताएंगे तब ठीक है.
हिरण्यकश्यपु को तो आप जानते
नहीं, नहीं पहुंचेंगे.
हिरण्यकश्यपु को नहीं जानते, उनके पिता थे,
उनके आदेश के अनुसार नहीं पहुंचेंगे.
तो वो कहेंगे जी भगवान का भजन मत करो, उन्होंने छोड़ दिया पिताजी की सेवा के, उसे भगवान को मिल जाएंगे? नहीं. इसलिए सभी माता पिता की सेवा करने से ही भगवान नहीं मिलेगा. यदि परम वैष्णव हों, उनकी सेवा यदि की जाए तो उसे मिल जाएगा. इसलिए हुआ जब भक्तों की सेवा करेंगे तब तो वो उन्हें मिलेगा. इसलिए सभी माता पिता की नहीं. दूसरी बात, हम जो प्रसन्न करते हैं इसके द्वारा गृहस्थ धर्म में रहकर, तो उसे क्या होगा? मुक्ति मिलेगी। मुक्ति संसार से जो मिलेगी, कष्टों से जो छुटकारा मिलेगा, यही आपका जीवन का उद्देश्य है?
नहीं।
क्या है
जीवन का उद्देश्य? है भगवान से प्रेम करें और भगवान के पास जाए।
क्यों?
क्योंकि हम उनके आगे हैं।
आपका स्वरूप ही है वो, अभी ढका हुआ है किंतु स्वरूप है उनकी सेवा। हमारा स्वरूप ही बना है प्रेम के लिए, प्रेम उसमें है। जैसे सरसों है,
सरसों हाँ,
उसमें तेल है, उसको पिसोगे तो तेल ही आएगा। और समुद्र की रेती या मिट्टी को पीसने से तेल नहीं आएगा, लाख पीसो। तो तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, ये स्वरूपता, इसलिए इसको निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। दूध में घी है, कैसे निकलेगा? मथने से ही नहीं होगा, मक्खन निकलेगा। मक्खन में भी घी दिखेगा नहीं, उसका आग पर रखो, घी अलग हो जाएगा और बाकी अलग हो जाएगा, तो घी को तुम देख सकोगे। वैश्य साधन के द्वारा इसको हृदय में प्रकट कर दिया है। ये चीज असल है, उद्देश्य है भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है इसको प्रकाश करना, जिससे कि भगवान की सेवा करने से हम भी सुखी रहेंगे, कृष्ण भी सुखी रहेंगे। ये जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य। ये जो वर्णाश्रम में धर्म में रह करके माता पिता की सेवा करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए जो आपको मुक्ति मिलेगी, इससे भगवत प्रेम भी मुक्ति तो होगी। मुक्ति माने क्या है? सांसारिक आसक्ति कट जाएगी और संसार के जो दुख हैं ये दूर हो, बस इतना ही है, और कुछ लाभ नहीं। इसलिए महापुरुष जी ने कहा ये नहीं, आगे बढ़िए। भगवान के प्रति प्रेम ही हमारा जीव का स्वरूप।
महाराज जी, श्रवण ने अपनी माता पिता की बहुत सेवा की थी, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं
हुई? नहीं,
कारण तो माता पिता की बहुत सेवा की।
माता पिता की सेवा करने से उसको स्वर्ग मिलेगा, लाखों करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग के सुख को भोगेगा, किंतु इसमें आत्मा का तो ज्ञान नहीं। भगवत प्राप्ति से क्या संबंध है? भगवान का नाम करने से, माता पिता की सेवा करता हुआ भी यदि कोई हरि नाम करता है ठीक से, और भगवान के प्रति प्रेम रखता हुआ, ये भाव रखता है कि पिताजी भी भगवान के सेवक हैं, इसलिए इनकी सेवा करो, तो उसे हो जाएगा। किंतु पिताजी जैसे हैं इनकी हम सेवा करें, वो भक्त हों चाहे न हो, तो उससे अधिक से अधिक आपको यही मिलेगा कि कुछ दिनों के लिए स्वर्ग मिलेगा, अब हो करके फिर नीचे गिरेगा। उसे भक्ति नहीं, भक्ति होगी भगवत संबंधी कोई क्रिया से, सुकृति होगी। यदि एक पैसा भी आपने दिया किसी सच्चे व्यक्ति को और उसने भगवान की सेवा के लिए उसने तेल खरीद करके उसे बत्ती ठाकुर जी को जला दिया, तो वो तो भगवान तक धीरे 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 पहुंचा दी। और ये लाख कोटि वर्ष तक पिता की सेवा करने से भी भगवान के प्रति तनिक भी भावना नहीं आई। इसलिए माता पिता घर में जब हैं तो माता पिता स्त्री के प्रति, पुत्र के प्रति, पति के प्रति जो कर्तव्य है वो करो, किंतु ये समझो भगवान ही पति हैं, भगवान ही पिता हैं, भगवान ही सब कुछ हैं, इसलिए भगवान की सेवा करने से इनकी भी प्रसन्नता हो जाएगी। जैसे पांडव लोग द्रौपदी के प्रति जो कर्तव्य था उन्होंने पूरा किया, द्रौपदी ने भी इनके प्रति कर्तव्य पूरा किया, अर्जुन भीम नकुल सहदेव परस्पर भाइयों में जो कर्तव्य था उसको भी पूरा किया, किंतु कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति उनकी रही मूल में। अर्जुन द्रौपदी को इसलिए प्यार करते हैं कि ये हमसे अधिक कृष्ण को प्रिय है, उसको सखी कहते हैं, उसके बुलाने से आ जाते हैं, इसलिए उससे साथ में प्रेम करते हैं। और द्रौपदी देखती है ये अर्जुन भगवान का भक्त है, इसलिए उसके प्रति वो सेवा की भावना। उनके परिवार में भगवान के प्रति भक्ति ही मूल चीज है, और सेवा जो है गौण है। गौण है समझती हैं? गौण माने नेक्स्ट, वो प्रधान नहीं है, अप्रधान। इसी तरह से भक्ति में भी बहुत उद्देश्य, जीवन में बहुत, भगवान को पाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, भगवान को तो कंस ने भी पाया, मिला कि नहीं? जरासंध दुर्योधन भी भगवान कृष्ण के साथ में आया गया। इसे नहीं होगा, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ये हमारा जीवन का उद्देश्य है।
तुम्हारा ये बात गलत है क्या कि जो माँ बाप की आत्मा को दुखा के तकलीफ देके जो भक्ति करता है, तो ऐसे कहते हैं लोग कि माँ बाप की आत्मा दुखा के भक्ति करे तो लोग भक्ति क्या लगेगी? कुछ नहीं।
झूठ बात है, ये
गलत है ना?
बहुत गलत है। जैसे हिरण्यकश्यपु का मन खराब हुआ कि नहीं?
हिरण्यकश्यप ने तो मना ही किया था कि तुम भक्ति मत करो।
हाँ, तो वो करते थे तो इसलिए वो दुखी होता था।
कोई तो ऐसा होता जो मना तो नहीं करते माँ बाप, फिर भी अगर पुत्र थोड़ा ज्यादा करता है तो माँ बाप ये बोल देते हैं कि मेरे से बिना बोले बिना ऐसे करे।
वो उनका भी अज्ञान है
तो ऐसा जो कहते हैं,
इसलिए भगवान का भजन कर दिया जाए तो माता पिता का अपने आप उद्धार हो जाता है, जो लाख वर्षों में वो नहीं कर सकते थे। माता पिता वृद्ध हो गए हैं और भगवान का नाम सुन करके चिढ़ते हैं और गाली गलौज करते हैं,
चिढ़ते नहीं है,
तब तो फिर उनसे कोई संबंध नहीं।
चिढ़ते नहीं, शिवानगर है, वृद्ध हो गए हैं, शिवानगर है वो।
नहीं, यदि वो भगवान का भजन करते हैं तो प्राण दे करके उनकी सेवा करे, यहाँ तक तो ठीक है। और भजन नहीं करते हैं यदि, तब जो साधारण रूप में उनकी सेवा है करते हुए उनसे अधिक संपर्क न रख करके भगवान की तरफ में अधिक।
नहीं, माली भजन दोनों करते हैं, पता भी करता है, पता भी करता है।
तुम्हारी धारणा अभी जो है वो अभी ठीक नहीं है, चीज को समझ नहीं रहे।
महाराज जी बता रहे हैं कि भजन करते हुए कोई भजन कर रहा है, पिताजी उसमें बाधक है कुछ भी, तो वो जो है पुत्र की जो साधना है भजन है वो लग जाएगी। अगर पिता जो है वो जो भजन नहीं करता वो दूर हो जाएगा।
हाँ, उससे उसकी भी भगवान में मति आ जाए।
मैं बात समझ गया था, मैं ये कह रहा हूँ पिता मतलब विरोध नहीं कर रहा है, अनुकूल है पिता, उसके भजन के अनुकूल है,
भजन का अनुकूल है तो ठीक है ना। वो ऐसा होगा जो कहे
सेवा नहीं कर रहा है पिता,
ठीक है ठीक है। वो पिता कहेगा जो बेटा मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तुम भगवान का खूब भजन करो, हमारा तो अपना जैसा कर्म किया है यदि भजन का, तो वो समझेगा ये हमारा जीवन एकदम ऐसा ही चलेगा, उसको किसी को सेवा करने की जरूरत नहीं है, वो मरते दम तक वो संतुष्ट है। लाख भी वो नहीं कहेगा, उसकी भगवान के प्रति जो भक्ति है वो आकर्षण करके, वो नहीं बेटा नहीं लाखों बेटे को लेकर के उसकी सेवा में नहीं झुकते। हमारी कौन सेवा कर रहा है बतलाओ तो? इन लोगों को जो हजारों लोग हमारी सेवा कर रहे हैं ये पीछे पीछे चल रहे हैं बतलाओ तो? वैसा यदि पिता होगा तो लाखों लोग उसकी सेवा करके धन्य हो जाएंगे।
मेरी सास है वो कोई बहु भजन कर रही है, उसको कुछ ही नहीं बोली, चाहे वो सारा दिन भजन करती
है।
तुम्हारा जी तो ये बात गलत है कि लोग जो बोलते हैं अनुकूल भी है फिर भी प्रतिकूल हो जाते हैं कभी कभी अपने पुत्र के प्रति।
हाँ, नहीं होना चाहिए।
अनुकूल है फिर भी प्रतिकूल हो जाते, फिर बोलते हैं माँ बाप की तो कोई सेवा करते ही नहीं है और चले जाते हैं साधु संतों के बीच में, तो वो उनकी पाप इसमें तो तुम लोग की ये भक्ति लगेगी नहीं, तो वो गलत है।
भगवान खुद कह रहे हैं बेटी यदि मेरी कोई सेवा अनन्य रूप में करता है मैं खुद उसका भरण पोषण करता हूँ, तो भक्तों की तो बात क्या है? ऐसा कोई भक्त है जो अपने माता पिता को छोड़ दिया जो भजन पारायण है? ऐसा कोई उदाहरण आज तक है? ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है विश्व में।
तो कृपालु दयालु सब उसके अंदर गुण आ जाते हैं
उसे, इसलिए यह बात गलत है। कभी भी वो न तो पिता वो पुत्र से चाहेगा न पुत्र चाहेगा कुछ, वो जहां देखेगा जब भक्ति का इतना भी है उसके प्रति सेवा ढाल देगा, अपने आप सेवा करेगा प्राण देकर के, ये भक्ति का स्वभाव है। इसीलिए वो सब दिखलाया गया है, जिनके प्रिय न राम वै देही तजिय कोटि वैरीशम यद्यपि परम शने तजेउ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलिगुरु तजेउ कंत ब्रज बनितन भये जग मंगल कारी। मीरा जी ने तुलसीदास जी के पास में पत्र लिखा, मैं घर में रह करके भजन करने के लिए बहुत चेष्टा करती हूँ किंतु हमारी सास, हमारे ससुर, हमारे पति, हमारे पास पड़ोसी सभी लोग हमारे विरोधी हो गए और हमको भजन नहीं करने देते, सब समय चाहते हैं कि भजन छोड़ दे। इस स्थिति में हम मुझे क्या करना चाहिए, आप हमको परामर्श दीजिए, आप हमारे शिक्षा गुरु जैसे। तो उन्होंने एक पत्र लिखा, जिनके प्रिय राम वैदेही, जिनके प्रिय राम और वैदेही, वैदेही सीता जी नहीं, तजिए कोटि वैरीशम, कोटि कोटि बैरी के समान में उनको छोड़ो, तजिए कोटि वैरीशम, यद्यप परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही से स्नेही है, आदरणीय है, स्नेही है, तो उनको छोड़ो। संसार में स्नेही कौन है सबसे, माता है, पिता है, भाई है, गुरु है, पति है, इसे पढ़कर के और कौन स्नेही हो सकता है। किंतु ये भी परम स्नेही हो, अपने कुटुंब के हो, माता पिता भाई गुरु इत्यादि, उनको भी छोड़ो। कैसे, कोटि बैरी सम, संसार की शत्रुता शत्रुता नहीं है। जो लोग हमें विषयों में आबद्ध करके मोह वशतः हमको भगवत भजन से च्युति करा देते हैं, ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है, इसलिए कहते हैं तजे को टिबेरी समझप परम समय, तजेऊ पिता प्रहलाद, अपने परम बंधु जिसने कि सारा जीवन उनका पालन पोषण किया, गर्भ में गर्भाधान किया, उसको पिताजी को प्रहलाद जी ने छोड़ दिया। हुआ क्या, परम मंगल हुआ, उनके पिताजी का तो उद्धार हुआ है और इनका भी। तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने, विभीषण को उसके भैया ने रावण ने लात मारी, इसलिए इसलिए तू राम की बात करता है, हमारा खाता है, जिस पत्ता में खाता है उसी में छेद करता है, तू हमारी सहायता नहीं करके कहता है जिसे हम सीता जी को लौटा दो, क्यों लौटाऊं, एक लात मार करके उसको फिर कभी मत आना। इन्होंने रामचंद्र जी की शरण, हुआ क्या, उनके वजह से कुछ कुछ लंका बच गया और नहीं तो सारी लंका ही समाप्त हो जाती, और विभीषण को भगवान की भक्ति मिली। और तजेऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी मैया कैकई, और उसको भरत जी ने बचाया, जीवन भर मां नहीं कहा, यदि कुछ कहा तो कहा महारानी कैकई, महल में है, उनकी खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी, किंतु कोई भी पारमार्थिक संबंध नहीं। हुआ क्या, भरत जी जैसा भक्त भी दूसरा कोई नहीं, और कौन, गोपियां, गोपियां अपने पतियों को छोड़ दी और कृष्ण के साथ में मिलने के लिए गई, और गुरु को कौन छोड़ा,
बलि
महाराज ने अपने गुरु को छोड़ दिया, उन्होंने कहा जी भगवान को मत दो, ये विष्णु है सब ले लेगा, तो विष्णु का ही दिया हुआ, विष्णु का ही यदि हम दे देते हैं तो तब इसे बढ़कर के क्या होगा, हमको ऐसे गुरु से जरूरत नहीं है जो भगवान की सेवा के लिए मना करे। उनका भी परम कल्याण हुआ, बलि महाराज जी ने सर्वस्व भगवान को चरण में सौंप दिया। इसलिए ये सब लौकिक बातें हैं, इनको कहते रहे, इसलिए भगवान के लिए हम, भगवान ही हमारे पिता के पिता के पिता के पिता के पर पिता के पिता के भी पिता के मूल पिता हैं, भगवान ही हमारे पति के पति के पति के पति के समस्त विश्व ब्रह्मांड के पतियों के पति हैं, भूल से हम नहीं देख रहे हैं इसको, कृष्ण ही हमारे सर्वस्व हैं, इस चीज को नहीं देख रहे, ये तो एक जन्म के और वो लाखों जन्मों के हैं। बुद्धि को देने वाले कौन है, माता पिता दिया, माता पिता ने हवा दे दी जिसे एक मिनट हम बच नहीं सकते हैं बीच से, पानी भगवान ने बनाया ना माता पिता ने, तो माता पिता के प्रति जो ऋणी है तो भगवान के प्रति कितना ऋणी होना चाहिए, इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए भगवान की सेवा ही हमारा जीवन का उद्देश्य, वो बात सब गलत,
ये जो कहते हैं पांच ऋण जब तक आदमी नहीं उतारे,
झूठ बात, भगवान का नाम लेते ही सब ऋण समाप्त हो गया, खत्म। उदाहरण देखिए, आपने उनसे 1,00,000 रुपया दिया, 1,00,000 रुपया के ऋणी है तो चुकाने चाहिए। तो मैंने सिंघानिया जी को भक्ति दी जो रुपये से नहीं खरीदी जा सकती, या समझ लिया कि हम कोटि रुपया इनको दिया तो हमारे कोटि रुपये के ऋण है, और भक्ति दिया तो भक्ति के ऋणी है ना। रुपये से आता ऋण चुक सकता है, भक्ति का ऋण नहीं चुकेगा। खरे रुपये में ही आइए, इनको 1,00,00,000 रुपया दिया और आपने उनसे 1,00,000 रुपया। मैंने इनसे कहा आप हमारे पास आए, महाराज जी आपके सामने आपके पास मैं रहना चाहता हूँ, किंतु उनका 1,00,000 रुपये का ऋण है, मैं कैसे आऊँ बिना चुकाए हुए। मैंने सिंघानिया जी को बोला, सिंघानिया जी आपने 1,00,000 रुपया दिया था? हाँ दिया था। वो हम में से काट लेना छोड़। ठहर जाओ। सिंघानी हंसने लगे, हाँ हमने छोड़ दिया भाई, अब नहीं गा तुम महाराज जी की सेवा करो, अब हमको रुपये की जरूरत। उनका 1,00,00,000 रुपये में से 1,00,000 रुपया के क्या मूल्य रखता है, उन्होंने साथ ही साथ में कहा। ऐसी बात हुई हमारे यहाँ, परमार्थी महाराज नाम के एक थे, वो जब गृहस्थ थे तो हमारे सनातन हमारे नारायणपुर के पिताजी उनके यहाँ नौकरी करते थे, हाँ उनके कारखाने में, कपड़े के कारखाने में। तो गुरु जी गए तो गुरु जी की कथा सुन करके बड़े वो प्रभावित हुए थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, नहीं मैं आपके पास में चलना चाहता हूँ। तो चलो मुनि महाराज जी का हमारे पास में 1,000 रुपया ऋण, 1,500 रुपया ऋण है, मैं बिना चुकाए भी कैसे जाऊँ, मुझको चूक की है। सनातन प्रभु वहीं पर थे, सनातन प्रभु को गुरु जी ने कहा जी आपका ऋण ही है, तो रुपया तो लिया था किंतु आपके पास में जाएगा तो हम एक पैसा हमको नहीं चाहिए, अभी अभी चला जाए, बल्कि हम इसको और 500 रुपया और अधिक दे देते हैं, ये रुपये लेकर के जाए अपना चलाए और इनकी आप महाराज जी के साथ में रहिए। बस उसी समय में उन्होंने छोड़ दिया, बल्कि 500 रुपया और दे दिया। ऐसे है ये जो भगवान के ऋणी है उसके समान और किसी का है, इसलिए जगत का जो ऋण है भगवान की सेवा करने से वो सब अपने आप, किंतु सचमुच में होना चाहिए, झूठ नहीं, झूठा नहीं।
भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता,
यह झूठ बात।
सही
दो बात इसको समझो, राष्ट्रपति हमारे देश के सब प्रकार से ऊपर वाले हैं, शासन में यदि कुछ होगा वो यदि कह देंगे तो वो सब, या प्रधानमंत्री हैं। किंतु मैं आपको गाली देता हूं चाहे प्रधानमंत्री हमारा सिर काट दें या वो, उस पर कोई अधिकार है उनका? सुझो भगवान ने तुमको एक स्वतंत्रता दी है, तुम को ये भी बतलाया जैसे ये अच्छा है ये काम बुरा है, तुम अपना काम ठीक से कर रही है, पुलिस या एसपी या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तुम्हारा कुछ करेगा? तुम अपना धर्म या अपना कर्तव्य पालन अच्छी तरह से कर रही, पुलिस और ये सब चीजें कानून सब उनके लिए बनाया गया है जो इसका पालन नहीं करते, आज जब खुद ही पालन कर रहा है इनके लिए कोई जरूरत नहीं है, समझ रही ना? अच्छा, किंतु तुम अपने तुम या कोई दूसरे चलते हुए राहगीरों को 10-20 को काट दिया, तुमको जेल में लेकर के ठूस दिया, फिर 10 वर्ष के बाद में फिर छूट गया, फिर 10 आदमी को काटा, कानून से मान सकता है वो? अच्छा तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि यह बात बुरी है ये चीज अच्छी है, तो अच्छी मान करके जो करेगा उसके लिए कानून दंड नहीं है, उसकी जो लिए अवहेला करता है उसके लिए। उसी प्रकार से भगवान ने हमको दिया जन्म, हमारा स्वरूप बनाया, हम उनके ईश्वर के अंश हैं, किंतु यदि हम भगवान की कही हुई बातों को नहीं मानते हम भगवान का भजन नहीं करते, दूसरों को कष्ट देते हैं, मारते हैं, गंदे काम करते हैं, तो उसके लिए भगवान दंड देगा, उसके लिए भगवान दंड देगा। इसलिए जो हमने जो बुरा कर्म किया, भगवान पूर्ण रूप में समर्थ रहते हुए भी उस पर अंकुश नहीं देते, तुम बुरा क्यों किया, तुम अच्छा क्यों, ये नहीं कहेंगे, ये तुम्हारे हाथ में है,
सोके दुख
तुम्हारा कल्याण हो,
हाथ जोड़ो,
बस बस। जो हम बुरे भावना को हृदय में लाते हैं और जो हम अच्छे कर्म करते हैं, ईश्वर भगवान कुछ नहीं करता। तुम जब बुरा करेगा उसका फल वो तुम्हारा नहीं चाहने से भी देंगे, तुम अच्छा करेगा उसका फल वो नहीं चाहने से भी वो देंगे। इसलिए फल भोगने में भगवान की पूर्ण स्वतंत्रता है, उसमें पत्ता भी नहीं हिल सकता है भगवान की इच्छा के। किंतु स्वतंत्र रूप में जो तुम पूरा करने की इच्छा करता है, भगवान कुछ नहीं कहेंगे। पहले एक बार मन में ही हृदय में कहेंगे ये बुरा कर्म है मत करो, मना करेंगे, तभी कोई नहीं मानेगा, करो किंतु फल भोगना, पीस देंगे तुमको। दुर्योधन को भगवान समझाने नहीं गए, समझाने गए बात माना, क्यों नहीं माना? वो चाहते तो उसको बदल नहीं सकते थे, बदलेंगे नहीं इच्छा शक्ति रहने पर। इसलिए उनकी हम लोगों के विषय में न्यूट्रल रहते हैं, हमारा कोई भी पक्षपात नहीं करते, किंतु यदि बुरा कर्म कर दोगे तो उसका फल तुमको एकदम पीस करके जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए हम अपने कर्म को ही ठीक से रखें, जिसको दंड देने की जरूरत है, नहीं तो फिर तुम बुरा करोगे, आप कहोगे जो भगवान ने किया, कोई डकैती कर रहा है, भगवान ने कहा जो डकैती करो। गीता में कितना उपदेश दिया है, अर्जुन को उपदेश दिया है, भागवत में उपदेश दिया है। समझाया उसको कितना, माना नहीं, चाहते तो उसकी आत्मा को बदल देते, किंतु नहीं, अपना उनका कुछ रूल रेगुलेशन नहीं बदले।
अरे तो महाराज, ये ऐसा कभी कभी जो होता है कि मन में नहीं चाहते हुए भी ये काम हमको नहीं करना है, हमको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम तो बहुत समझाते हैं अपने को भगवान को, फिर भी कभी कभी क्रोध आता है।
ये पूर्व जन्म का संस्कार है बेटी, पूर्व जन्म में तुमने कर्म किया, उसका फल भी होगा नहीं, इसलिए उस फल भोगाने के लिए ये ऐसी बात होती है। इसलिए पूर्व जन्म में हमने कुछ गड़बड़ किया था, उसके मतलब है जो तुम्हारा चित्त शांत नहीं है, मन समझाने पर भी नहीं समझता।
हाँ, बहुत शांत रहना चाहते हैं कि नहीं नहीं शांत रहो, फिर भी अंदर से कभी कभी
वही पूर्व जन्म का संस्कार है। देखो, एक कुत्ता है रास्ते चलता हुआ, उसको तुमने रोटी दी, दो तीन दिन देने के बाद में वो तुम्हारे घर आने लग गया। अब उस कुत्ते को एक आदमी ने एक पत्थर मारा, उसकी टांग टूट गई, तुमको क्रोध आएगा कि नहीं? क्यों?
शक्ति होगी,
ये इसको कहते हैं संस्कार। ये संस्कार पूर्व जन्म में हमने लाखों लाखों जन्म में जो किया है उसका ये इसमें भरा पड़ा है, इसी को काटना है, धोना है, ये भजन से हो। जितना ही भजन करतेगी, करते 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 ये सब चीजें निकल जाएगी, धुल जाएगा, और भगवान के प्रति जितना ही भक्ति होती जाएगी ये सब चीजें स्वाभाविक। और लाख चेष्टा करने में भी उस संस्कार को दूसरे कर्मों से नहीं धो सकते, लाख करो वो तो भोगना पड़ेगा, और भगवान का भजन करने से वो भोगने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप। अजामिल ने लाख लोगों का वध किया, उसको भी फल नहीं मिला।
वाल्मीकि
ने लाखों करोड़ों, अर्जुन ने अपने धनुष बाण से, अब भीम ने लाखों लोगों को मारा, उसका फल उनको मिला है, भोगने के लिए है, क्यों? सब कुछ भगवान के लिए किया, उनमें कोई संस्कार नहीं थी।
इस प्रश्न का उत्तर का समय समालोचना हो रहा था इस कॉल में भक्त से, सन्यासी से, मैंने कहा जैसे आपने कहा कि गलत है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं सकता, बदमाश आदमी आके कहते हैं कि मैंने थप्पड़ मारा या उसको एक मुक्का मारा या बैंक डकैती की, सब भगवान की इच्छा से हो रहा। मैंने सन्यासी से कहा कि ये गलत बात है, आई डोंट एग्री। तो वो प्रोटेस्ट करने लग गए, नहीं आप सोच सकते हैं ऐसा बिकॉज अपनी इतनी योग्यता नहीं,
उनको न भजन है न साधन है न
गुरु,
बड़े उत्तम लोगों का संग है, इसलिए उन चीजों को नहीं समझ पाए। उसके शब्द के अर्थ को समझ सकते हैं किंतु शब्द में बहुत सी बातें हैं।
लेकिन राम बात को इतना महत्व नहीं दे रहे हो,
राम महत्व कैसे देंगे, उनको संग ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है, तो वो क्या महत्व देंगे।
आज इसका उत्तर आपसे मिला है जो कि मिलता है हमारे विचारों से,
आपके विचार से मिले चाहे न मिले इसका कोई गुरुत्व नहीं है। गुरुत्व यह है जो शास्त्रों से मिलता है कि नहीं और बात शुद्ध है कि नहीं।
तुम्हारे ये जो कहते हैं कि भगवान पग पग पे देखता है, जीव
देखता है,
एक एक कदम जो चलता है वो सब देख रहा है, हाँ, वो बात सही है,
ठीक है,
सही है।
वो हवा के माध्यम से देखते हैं, आकाश के माध्यम से देखते हैं, सूर्य के और चंद्र के माध्यम से देखते हैं,
जो उसका एक-एक कर्म, उसका एक-एक जो
सब कुछ, सब कुछ
सब लिखा जाता है, सब सब लिखता है, ये बात सही है,
सब सही है,
और लेखा जोखा जो होता
है सब ठीक है।
महाराज जी
आप बताने जा रहे थे शब्द के टोन में उनका अर्थ छिपा हुआ है,
छोड़ दो पहले पहले इनको बोल दो। बोलिए
महाराज जी, अभी मुरारी बाबू का कुछ दिन पहले टीवी पे गोपी गीत बोलकर एक प्रोग्राम था, उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण, यहाँ तक तो इस मत से हम लोग को लगता ठीक है, उन्होंने कहा श्रोता और वक्ता दोनों गोपी है, ये कहा
पाखंडी है, पाखंडी
गलत कहा ना, एकदम
गलत, एकदम माया बात हुई है। गोप गोपी नहीं, वो कहेंगे जैसे ये जितने विश्व में प्राणी हैं ये सभी कोई कृष्ण नहीं है, उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए। इसको आजकल वही सुन रहा है, इसलिए दिशा भ्रष्ट है। गीता भागवत जिसका अनुमोदन करते, गीता में लिखा गया ये सब गोपी है,
कई करोड़ करोड़ जन्मों तपस्या करके गोपी बनी है,
नहीं
जो भी
करोड़ों भी तपस्या से नहीं होता, ये तपस्या आराधना और तपस्या में बहुत अंतर है। वो बल्कि भगवान की कृपा से होगा, आराधना से भी नहीं होगा, वो विशेष भगवान के भक्त जो हैं गोपियों की कृपा से, जोग माया की कृपा से होगा,
भगवान की इच्छा अनुसार।
भगवान की कृपा यदि हो, जोग माया की कृपा हो, या ऐसे उत्तम कोटि के जो भक्त हैं उनकी कृपा से, साधन से भी नहीं होगा। सुखदेव गोस्वामी ने कभी कहा जैसे मैं गोपी हूं और ये सब गोपी हैं, कभी नहीं, यही तो बात है।
आराधना और तपस्या में क्या अंतर है?
आराधना माने मैं अपनी चेष्टा से खाऊंगा नहीं, वैराग्य करूंगा। जैसे ध्रुव ने 6 महीने तक खाया नहीं, हवा भी बंद कर दिया, अंत में पानी भी बंद कर दिया और ध्यान भगवान में लगाया, इसको कहते हैं तपस्या। तप माने कष्ट, कष्ट हमने स्वीकार करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जैसे बेटा को आपने एक थप्पड़ मारा और बेटा खाना पीना छोड़ दिया ना, और चुपचाप बैठ गया, पढ़ना लिखना बंद कर दिया, खाना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, बस चुपचाप बैठ गया, मैया क्या करेगी, 1 घंटा रहेगी, 2, इसके बाद में दिखा जी नहीं उठता है तो क्या करेगी, कुछ याद करके उसको जैसे तैसे जो कुछ मांग रहा है उसको देगी, उसको मनाएगी। तो ऐसे ही हमारे कष्ट को देख करके भगवान कहेंगे भाई तू क्या चाहता है, क्योंकि हम उसके संतान हैं इसलिए कष्ट को देख करके क्या चाहता है। वो कहेगा जैसे हम वज्र जैसा शरीर चाहते हैं, विश्व ब्रह्मांड का वैभव चाहते हैं, अच्छे जाओ, इसको कहते हैं तपस्या। ध्रुव ने राज्य के लिए तपस्या की थी, और आराधना है भगवान का नाम कीर्तन श्रवण कीर्तन स्मरण करते 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 हा कृष्ण हा राधे हा गोपी, हा गुरु वर्ग हमारे ऊपर में दया की, यह है आराधना। भाव से भगवान को भजन करते हैं, इसके लिए जो आराधना होती है ये आराधना, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन, इसमें कोई आराधना, इन दोनों में अंतर। इससे भगवान मिलते हैं और उससे भगवान जो मांगते हैं चीज दे करके भगवान हट जाते हैं, ये अंतर। बोलिए आज अपना जो कुछ पूछना है पूछिए।
ब्रह्मा जी और शिव जी के बारे में कहीं कहीं लिखा है कौन की बुक्स में कि शुद्ध भक्त हैं, कहीं कहीं लिखा है कि वो दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, वो लोग शुद्ध भक्त नहीं है, कंफ्यूजन होता है इन लोगों के बारे में।
कहाँ ऐसा लिखा है?
वी इस्कॉन के बुक्स में, भगवत गीता में या श्रीमद् भागवत में बहुत जगह कंट्राडिक्टरी मिलता है तो कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने कहा सोचा कि आपसे पूछें कि स्पष्ट क्या है उन लोगों का।
ब्रह्मा और शंकर जी भक्त हैं, इसमें कोई बात नहीं है, कोई भी शंका की बात नहीं, किंतु उनके भक्ति में तारतम्य है। ब्रह्मा जी की भक्ति से भी शंकर जी की भक्ति और ऊंची है,
वैष्णव गुरु,
और हमारे संप्रदाय के आदि गुरु ब्रह्मा जी हैं, तो भक्त नहीं होंगे तो ऐसे ही ग्रहण कर लिया। नारद जी ने और व्यास जी ने, सुखदेव गोस्वामी जैसे लोग जिस परंपरा में आ रहे हैं, तो नारद जी भक्ति नहीं है, ये तो साधारण सी बात है। तो जो ऐसा कहते हैं वो मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते। और भागवत में ही लिखा है वैष्णवानां यथा संभो, जो गोपी बन करके गोपीश्वर बन करके वृंदावन में कृष्ण की सेवा करते हैं उनकी भक्ति में कोई संदेह हो सकता है? इसलिए इसमें शंका की बात नहीं, इसलिए ये लोग जो कह रहे हैं
दे आर प्योर डिवोटीज, दोनों भक्त प्योर डिवोटीज।
वो कहीं भी कोई हो, कोई भी कह रहा हो, चाहे इस्कॉन हो इस्कॉन के बात है, तब एक बात है वो जगत का पालन पोषण करते हैं, ध्वंस करते हैं, भगवान की इच्छा से जगत का ये सृजन करते हैं। कैसा सृजन करते हैं? जीव को नहीं, जीव के बाहरी शरीर को। और शंकर जी जैसे खेत होता है, खेत देखा है, कोई चीज लगाते हैं उसकी रक्षा करते हैं, वो बड़ा हो जाता है, गेहूं जैसे है, बड़ा हो गया, उसकी अन्न उसमें लग गए, दिन रात उसकी चौकसी देता है, और जब खेत पक जाता है तो उसको क्या करता है, हसिये से काट लेता है, काट करके उसमें से अन्न को झाड़ लेता है और पुआल को जला देता है या किसी दूसरे काम में दे देता है, और उसमें भी धान गेहूं को अच्छी तरह से रख करके उसको पीस करके खाता है, पुआल तो खाता नहीं। तो शंकर जी इस जगत में जिनके ये सब शरीर हैं जो कर्मों से मिला है, अंत में इसको हटा करके उसकी आत्मा को रख लेते हैं, और वो आत्माएं भगवान नारायण में जो गर्भोदशाई हैं उनके शरीर में उस बीज को रख देते हैं, और फिर जब दूसरी सृष्टि आएगी तो फिर। इसलिए शिव जी भी ध्वंस नहीं करते, वो पुआल घास को जला रहे हैं, ये भी उनकी कृपा है, नहीं तो गेहूं उसी में रह करके सड़ जाएगा यदि बीज से अलग नहीं किया जाए उसे पुआल से, ये भी कृपा है। और ब्रह्मा जी जैसे मोटर है, अमेरिका से, इंग्लैंड से, यहां से पुर्जे बन करके आए, हिंद मोटर में उसको जोड़ करके एक मोटर बना दिया, ठीक वैसे ही ये शरीर के प्रपंच के जितने शरीर हैं ये ब्रह्मा जी का कार्य है, आत्मा को नहीं। आत्मा उसमें जाने से ये समझती है कि मैं ही ये शरीर हूं, ये ब्रह्मा को, किंतु दोनों परम भगवत हैं, किंतु इनका कार्य कुछ निमित्त के लिए है, बस त्रिगुण के अंतर्गत है। ब्रह्मा जी का कार्य है रज और शंकर का कार्य है तम, किंतु इनसे अतीत है, अतीत होकर के भी उनके गुणों का काम कुछ करते हैं, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। जैसे सब जेल में सभी कैदी होते हैं, है ना? किंतु जेलर यदि जेल को देखने के लिए जाता है तो वो कैदी है कि नहीं? कैदी है। अच्छा, उसका जो पुलिस जो रहता है, सिपाही जो गार्ड देता है, वो जेल के अंदर में गया तो वो भी कैदी है? उसी तरह से ब्रह्मा जी, शंकर जी जेल में, ये संसार रूपी जेल है, दुर्ग है, उसका सुपरविजन करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, किंतु जेल में नहीं है, माया में नहीं है, इस तरह से सुनते हैं। कभी कभी विष्णु स्वयं ब्रह्मा और शंकर बनकर के जगत का पालन और ध्वंस करते हैं, और कभी कभी जब ऐसा योग्य जीव मिलता है तो उसमें कुछ शक्ति संचार करा करके तब ब्रह्मा का काम कराते हैं और शंकर का। तो जिस समय में विष्णु वो काम करते हैं स्वयं ब्रह्मा बन करके, उस समय में उस विष्णु ही है भगवान।
महाराज, कर्म के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र माने जाते हैं, मगर एक जगह लिखा है कि जब भगवान कृष्ण यहाँ आए उस समय कुछ लोग उनके अगेंस्ट में जो थे उस समय भी, वो लोग ब्राह्मण वंश में उनका जन्म होता है इस समय कलयुग में, कहाँ तक ये सच है? ये कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है हमको।
अभी ठीक से पूछिए साफ कर।
सतयुग में सतयुग के जो ब्राह्मण थे निराशत थे
ना, इनको बोलने दो, आप अपना वक्तव्य स्पष्ट हो।
भगवान के समय में कुछ लोग जो भगवान से विमुख थे, वो लोग इस कलयुग में ब्राह्मण वंश में उनका जन्म होता है। तो इधर में ब्राह्मण वंश में जन्म होता है, दूसरी तरफ लगा कि कर्म के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये दो।
तो ब्राह्मण के कृष्ण के समय जो विमुख थे वो कैसे कर्म करते होंगे?
अगेंस्ट वाले
तो इसलिए विमुख होकर ब्राह्मण होकर के मैं बहुत ऊंचे कुल में हूँ, और मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मुखर्जी सू एंड कंपनी बनाते हैं, हमारे यहाँ ब्राह्मणों में बहुत से लोग ऐसे करते हैं, मांस मछली खाते हैं, तो ये ब्राह्मण में आकर के ये ब्राह्मण का कार्य थोड़े कर रहे हैं, इसलिए पहले असुर थे उसी
का। मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ तो बोलते हैं कि वंश के जन्म के जो है कर्म के हिसाब से होता है ब्राह्मण,
कर्म कर्मचारी तो हुआ,
अब वो बोलते हैं कि ब्राह्मण
कलयुग में जन्म होगा, कलयुग में सबसे भ्रष्ट ब्राह्मण होगा,
राक्षसा कलिमस्तो जयन्ति,
इसलिए। और इसलिए भी नहीं, असल में हुआ जो बौद्ध धर्म को जो मानता है वो सब निशाचर है, इसलिए आजकल कलयुग में सब लोग, अधिकांश लोग अब धीरे 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 बौद्ध होते जा रहे हैं या जैन होते जा रहे हैं। एक साथ में 40,000 लोग हिंदुओं से मुसलमान ये थे, चमार मूची इत्यादि, ये हमारी उन्नति होगी, हमको नौकरी मिलेगी, और इसलिए बौद्ध बन गए। वो धर्म के लिए तो बौद्ध नहीं हुए, कुछ संसारिक सुविधा के, कोई लोग क्रिश्चियन हो गए, किस लिए हुए? अपने कर्म से, संस्कार से,
सुविधा के लिए,
अपनी सुविधा के लिए हुई जागृति, इसलिए इसे कर्म का और उसका कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए कलयुग में सभी एक तरह से शुद्ध ही हैं, जन्म से ही।
जन्म तो ले लिया ब्राह्मण कुल में,
अरे भाई ब्राह्मण नहीं है आजकल का ब्राह्मण भी वही समझो, बल्कि उस बनिए और दूसरों से भी गए बीते हैं, इसलिए कलयुग में ये ब्राह्मण हुए।
मेरे कहने का मतलब एक तरफ तो आप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि कर्म के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं,
हुआ तो
हाँ,
किंतु कलयुग में ब्राह्मण जो जाति है ये भी शूद्र के समान हो गई है, इसलिए उस शूद्र में भी वो ब्राह्मण में ही आ रहे हैं, उनको कुछ सुविधाएं मिलनी है, जो निशाचरी का काम किया है, भगवत विमुख का काम किया है, इसलिए वो ब्राह्मण। यथार्थमा में दो चीज है वर्णाश्रम धर्म, एक दैव वर्णाश्रम और एक आश्रिक वर्णाश्रम। जो दैव वर्णाश्रम है वो उसमें साधु भाव रहेगा, भगवान का कुछ भजन रहेगा, वो ब्राह्मण होते हुए भी भगवान का भजन करेगा, ये तो दैव वर्णाश्रम। जिस कुल में भी जन्म हो किंतु भगवान का भजन करने वाले, जिसमें शांत दांत सहिष्णुता विद्या इत्यादि है, वो लोग ब्राह्मण। इसलिए जो जिसमें नहीं है वो सभी शूद्र के समान है। तो कलयुग में इसके ठीक ही विपरीत हो रहा है, कर्म से उनको आना चाहिए शूद्र में, तो चूंकि ब्राह्मण भी आजकल शूद्र है इसलिए उसमें शूद्र में आ रहे हैं। यह है अद्वैव वर्णाश्रम। अद्वैव वर्णाश्रम है भगवान का भजन करते हैं, हरिनाम करते हैं, सबके प्रति दया भाव है, सहिष्णुता गुण है और सब जीवन है, किसी भी कुल में हो, किंतु ब्राह्मण स्वभाव का है। प्रभुपाद जी ने हमारे शास्त्रों में भी भागवत में भी इसी प्रकार से कहा। एक ऋषभ देव थे, उनके 100 लड़के थे। 100 लड़कों में से एक हुआ क्षत्रिय राजा, उसका नाम हुआ भरत, और 9 हुए 9 जोगेंद्र, जाति पाति से ऊपर परमहंस, सब समय भगवत चिंता करने वाले, 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। कर्मकांडी ब्राह्मण, एक ही पिता के ये कैसे संतान विभिन्न हो गए, क्यों हुए? कोई ब्राह्मण चाहते एक पिता का तो एक ही होना चाहिए ना, यदि जाति से होता है, इसलिए पहले ऐसा नहीं था। ये कलयुग में कुछ विपरीत भाव होकर के ऐसा हो रहा है। आजकल संस्कार है ऐसा, जो चारों वर्ण में कहीं भी जन्म लो वो शुद्ध ही है। यदि भगवत भजन करते हैं, जहां भी है, ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण,
ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण, चाहे वो कोई।
इसलिए इसके चक्कर में अधिक समय नष्ट करने की जरूरत नहीं, बस भगवान का स्मरण करें, चिंतन कर, उसको कोई डाउट नहीं रह जाएगा किसी भी विषय। कोई भी डाउट नहीं रहेगा
महाराज जी। तन मन आत्मा,
तन मन वचन और आत्मा,
इसके विषय में थोड़ा मेरे को जानना है कि तन क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है।
अच्छा,
ये भजन कर रहा है कौन कर रहा है, मन कर रहा है
भजन, ये आत्मा करा रही है,
आत्मा करा रही है, कर कौन रहा है?
ये अभी मन कर रहा है, अभी मन कर रहा है, किंतु आत्मा के द्वारा हो रहा है। चोरी जो हो रही है ये संपूर्ण रूप से मन की है, पूर्व जन्म का संस्कार से ये कर रहा है, इसमें भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है, आत्मा की कोई भी प्रेरणा नहीं है। चोरी चमारी, झूठ बोलना, बेईमानी करना, दूसरों को काटना मारना डालना, ये मन का ऐसा स्वभाव है, जैसा मन का संस्कार किया था वैसा। अभी जो हम कहेंगे तुम हरिनाम करो, आप कहेंगे जैसे इसमें अभी मन नहीं लगता है, पहले हम कहें नहीं मन लगता है तो भी करो, आपका मन नहीं कर रहा है तो अभी जोर से आप कर रहे हैं, ये कौन कराया? साधु जी ने कहा, गुरु ने कहा, आप कर रहे हैं, अपने मन से तो नहीं कर रहे। वो कहा जैसे देखो तुम जितना संसार में काम कर रहे हो, एक नाम थोड़ा सा भी कर देगा तो उसे लाखों तुमको लाभ मिलेगा, इसलिए श्रद्धा हुई आप नाम करने में। इसलिए नाम को कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन? एक महापुरुष, वो कौन है? कृष्ण का भक्त है। और ये कौन कर रहा है, ये कौन सुना? ये आत्मा, आत्मा मन नहीं करा रहा, मन तो खजूर का काम कराएगा, उसका संस्कार ही वैसा कर रहा है।
तो क्या एक वजूद में दो चीज होती
है? इसमें 4-5 चीजें हैं। ये शरीर है ना, ये है कपड़ा, ये कपड़ा कैसे उठ रहा है, बैठ रहा है, कौन करा रहा है? अपने आप कर रहा है ना, ये कपड़ा उठ रहा है, बैठ रहा
है,
हाथ करा रहा है। अच्छा, आदमी जब मर जाता है तो उसका हाथ कैसे ऐसा क्यों नहीं करता? क्यों
बोलते हैं वो आत्मा नहीं है उसके शरीर?
तो आत्मा नहीं है इसलिए नहीं कहा, इसलिए वो आत्मा करती है ना, इसलिए मन नहीं, वो शरीर नहीं करता, ये पहली बात तो ये समझो। अच्छा, अब रहा मन, मरने के बाद में मन रहता है कि नहीं? इसलिए ये शरीर का काम जो था अब वो बंद हो गया, इसमें मन भी नहीं है, आत्मा भी। अच्छा, एक आदमी सो रहा है वो स्वप्न भी नहीं देख रहा, एकदम सो रहा है, उस समय में मन की कोई क्रिया है कि नहीं? शरीर तो है ना, शरीर कभी इधर से उधर ऐसा भी करता है किंतु सो रहा है। अच्छा, उस समय में मन की भी क्रिया कोई नहीं है किंतु मरा हुआ भी नहीं है, इसलिए मन से यह शरीर अलग है।
मन क्रिया तो है उस समय,
मन की क्रिया नहीं है,
शांत है।
उसमें मन से वो अलग चीज है। मन हाँ वही, अब समझो, इसको समझा रहे शरीर और मन में तो ये फर्क हुआ, शरीर हम नहीं है, मरने के बाद में ये काम नहीं करते। अच्छा, अब मन में और आत्मा में समझो उसमें क्या अंतर है। मन में आत्मा में ये अंतर है कि जब आदमी मरता है तो जोंक की तरफ में मरता है। जोंक, जोंक जानती है,
लीच, लीच
कीड़ा,
पानी में जो चलने वाला एक छोटा सा कीड़ा होता है जो चिपक जाता है, खून चूसता है, तो वो चलता है तो ऐसे चलता है, ऐसे रखे फिर पैर उठा करके फिर ऐसे,
वो एक पांव जब तक दूसरा नहीं रखा जाएगा दूसरा पांव
नहीं उठाता। वैसे ही आत्मा जो है अभी मन के द्वारा कवर्ड है।
अच्छा,
जैसे शरीर मन अभी कवर्ड है शरीर के द्वारा,
मन कवर्ड है शरीर के द्वारा,
हाँ ये तो समझ में आ रहा है ना।
हाँ,
इसके अंदर में मन है।
अच्छा,
और मन दिखाई नहीं पड़ता। वो बाहर आए, उसी तरह से मन में लिपटा हुआ आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है।
ये मन जाता है, बोलते आत्मा जाते वो नहीं, मन मन रूपी शरीर,
समझो फिर से, आत्मा उसमें है।
अच्छा,
किंतु ऊपर से भी मन बुद्धि अहंकार और चित्त उस पर लिपटाया हुआ है।
अच्छा, जो की तरह
आत्मा के ऊपर में अभी कवरिंग है। अच्छा, और एक उदाहरण देखो, ये चीना बादाम एक होता है
मूंगफली,
उसके ऊपर में हार्ड कवरिंग होता है। हार्ड कवरिंग को निकाल लो, उसको किलो के वजन से बिक्री करो, कितने किलो में वो बिकेगा, कितना रुपया छिलका, कोई दाम है उसका। वैसे ही आत्मा निकल गई तो इस शरीर का मूल्य नहीं, ये अलग हो गया। अच्छा, उस पर एक लाल कवरिंग होता है,
पतला सा
लाल कवरिंग को निकाल लो, उसको बिक्री करो तो कितना उसका मिलेगा,
कुछ नहीं।
क्यों? उसके अंदर में जो दो दाने हैं वो मूंगफली है। इसलिए मन के भीतर भी दो हैं, एक आत्मा और एक परमात्मा, इस चीज को समझो। इसलिए वो कवरिंग जैसे बादाम नहीं है, किंतु बादाम के साथ रहते हुए भी वो बादाम के दर में ही बिक्री होती है, उसका फल भी, उसका ऊपर का कवरिंग भी, किंतु फिर भी वो कवरिंग वो नहीं है। ऐसे ही हमारे ऊपर में मन बुद्धि अहंकार और चित्त है। जब ये भी शुद्ध हो जाएगा तो जीवात्मा मुक्त होगी, और उसमें साक्षी एक भगवान है, परमात्मा और एक आत्मा है। ऐसे जब मुक्त हो जाएगा तो ये भी छूट जाएगा, तब मुक्ति होगी, तब सुख दुख और जो मैं ये शरीर हूँ ये सब भाव दूर हो जाएगा और परम मुक्त होकर के।
तो ये जो बोलते आदमी सपने में सो रहा है, सोते सोते वो कहीं कहाँ 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 चला जाता है वो
मन? ये मन अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों को भोग कर रहा है, इसको समझो।
तो उस समय जो मन निकलता है तो उसके साथ वो आत्मा, आत्मा तो
आत्मा भी जड़ है, मन भी जड़ है।
अच्छा,
किंतु अभी आत्मा को ऊपर से संबंध है ना, जैसे मूंगफली का ऊपर का जो कवरिंग है जड़ है ना।
हाँ,
किंतु जब तक उसमें वो बीज है उससे संबंध उसका है, तब तो मूंगफली का ये कवर भी बढ़ता 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 इतना बड़ा हो जाता है ना। और जब छोटा सा था उसी समय ही उसका निकाल लो बीज तो वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। उसी तरह से शरीर जब छोड़ता है उस समय तो मन रहता है आत्मा के ऊपर में, और भजन साधन के द्वारा उस मन को भी जब हटा देते हैं तो शुद्ध रूप में आत्मा और परमात्मा रह जाता है, तब उसको मुक्ति होकर के भगवान की। अभी हम जो कुछ कर रहे हैं मन से कर रहे हैं, जो अच्छा और बुरा, किसी में जो भगवान का जो भजन कर रहे हैं, ये जो शिक्षा मिल रही है, ये मन की क्रिया नहीं है, ये तो गीता भागवत रामायण पुराण की बात है, भगवान का उपदेश है और संतों के उपदेश से हम इच्छा के विपरीत भी नाम कर रहे हैं।
वो केवल आत्मा कराती है,
वो आत्मा का काम,
और जो भी काम ये अच्छा बुरा करते सब मन का,
सब मन का। किंतु देखो मन कुछ कर नहीं सकता, इसमें आत्मा है तभी तक कर रहा है। अभी हरिनाम करते करते ये चीज जैसे अभी शरीर और मन का समझ गई, अब उस आत्मा में और शरीर मन में समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, ये संस्कार सहज ही नहीं जाएगा, किंतु हरिनाम करते करते सब नहीं भी जाएगा तो कोई हर्ज नहीं, हरिनाम करते रहेंगे भक्ति करते रहेंगे ये दिन चला जाएगा। कितना बोल रहे हैं, एक घंटा हो गया, हृदयंगम करके तो अनुभूति करके कहते हैं, और लोग शास्त्रों में लिखा इसलिए कहते हैं इसलिए उनका फल नहीं होता और उनमें गलतियां होती,
रियलाइजेशन नहीं।